તારીખ 19/9/1991 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 34
ઓર ચરમ શરીર છે ઇસલિયે ઉન્હોને 14 સાલ કા વનવાસ કે બાદ અયોધ્યા કી ગાદી પર 17,000 સાલ ઉન્હોને રાજ્ય કિયા હૈ बाद में वो मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष में पधार गए। अभी इनका आत्मा जो है वो सिद्धालय में सिद्ध स्वरूप में है। उनका जो काल है हमारे पुराण के अनुसार तो 20वां तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत नाथ के समकालीन थे। वे भगवान मुनि सुव्रत नाथ जब तीर्थंकर पद में विराजते थे उस काल में रामचंद्र जी का उदय हुआ है इस भाव का, और ये अंतिम भाव था उनका। शायद सम्यक दृष्टि थे, चरम शरीरी थे, और राज्य काल में भी या बचपन से शिक्षा काल में भी सभी प्रकार की लौकिक विद्या में वो पारंगत थे। लौकिक विद्या में 72 कला बोलने में आती है, 72 मैंने सब, कोई कला बाकी नहीं। शिल्प कला भी जाने, चित्रकला भी जाने, बाण कला जाने, नृत्य कला जाने, सब कला जाने, कोई कला बाकी नहीं संसार की। मैंने बहुत विचक्षण थे, इसलिए वो अन्य मत में तो पुरुषोत्तम पुरुष के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। कैसे हैं रामचंद्र जी के पुरुषोत्तम पुरुष थे, ऐसा कहते हैं। हाँ, दोनों का तो क्या है कि जब अन्य मत में वो पात्र लेते हैं तो कुछ फिर पार तो करेंगे ही करेंगे। जैसे भगवान महावीर है तो श्वेतांबर दिगंबर दोनों मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि उनको पत्नी थी, उसको पुत्र पुत्री भी थी, और दिगंबर मानते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो इतिहास में तो कुछ न कुछ फर्क, जब दो अभिप्राय हो जाएगा तो कुछ न कुछ फर्क तो बताने वाले है ही। एक सा इतिहास पूरा पूरा हाँ, पूरा का पूरा तो नहीं बदले, पूरा इतिहास नहीं बदले, कुछ न कुछ बदले। उसका मेल कौन मिलावे? जो 2500 साल पहले जो घटना घटी हो, अभी आप देखिए कि सोनगढ़ में एक घटना घटी होगी, तीन आदमी तीन बात करेंगे। वर्तमान में अभी तो यहाँ का यह सब पात्र है, कोई चले नहीं गए स्वर्ग में, फिर भी एक बनाव बनेगा तो तीन आदमी तीन बात करेगा। कोई सुनी हुई बात करेगा, कोई सुनी हुई इनके पास से सुनी हुई बात करेगा, कोई नजर से देखी हुई बात करेगा, और दो नजर से देखने वाले भी अलग अलग बात करेगा। तो ये बात तो संभवित है कि एक ही घटना पर अलग अलग रिपोर्टिंग मिलता है। तो 2500 साल के पहले की बात होवे तो अलग अलग होंगे, इसमें क्या है? इतिहास में फर्क मिलेगा ही फैलेगा। किसी का एक सा इतिहास वर्तमान घटना का नहीं मिलता है, भूतकाल की घटना का तो मिले ही कैसे? ये तो मैं कहता हूँ, वर्तमान घटना घटती हो भी इतिहास का एक अंग है ना, तो वर्तमान में भी उसका फर्क पड़ जाता है तो भूतकाल में तो फर्क पड़े ही पड़े, क्योंकि बात परोक्ष रह गई। इतिहास में तो फर्क आ जाएगा, वो तो जहाँ विचार भेद होता है वहाँ कुछ न कुछ अंतर रखने का अभिप्राय रहता है। जैसे श्वेतांबर में दो गच्छ होते हैं बड़े बड़े, तो एक कहता है कि हमारा पहला तिथि हम पालेंगे, दूसरा बोलेगा कि हम दो तिथि हो जाती है ना कभी, तो कि आठम दो हो गए तो पहली पालन करना है या दूसरी है, आता है कि नहीं आता है। तो जब विचार भेद होता है तो कुछ न कुछ फर्क होगा ही होगा, ये अभिप्राय में रहता है कि आपसे मैं अलग हूँ तो मैं कुछ न कुछ तो मेरा अलग रखने का, मेरा चौका अलग रखने के लिए कुछ न कुछ तो मैं फिर फार करूँगा ही, क्योंकि मैं आपसे कुछ अधिक हूँ, ऐसा मैं कैसे दिखाऊंगा। मैं फिर फार करूँगा जब भी पता चलेगा कि मेरी बात कुछ ज्यादा है अधिक है। हाँ दोष तो होता ही है, गलत बात चलाना ये अवश्य दोष है, लेकिन जब मताग्रह होता है, मताग्रह होता है तो गलत काम करने में भी हिचकिचाट नहीं रहता। क्या एक चीज का आग्रह बन जाता है अपना अभिप्राय का, तो जानबूझकर भी लोग गलत काम कर लेते हैं, ऐसा बनता है। देखिए भगवान तो वितराग है, तो इनको श्रृंगार अच्छा लगता है क्या? हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। जो साधु है वही खुद श्रृंगार नहीं करते, मुनिराज है? मुनिराज भी त्यागी वैरागी निष्परिग्रही होते हैं। तो भगवान तो मुनीश्वर है, मुनि श्रेष्ठ है, मुनीश्वर मैंने मुनियों में भी श्रेष्ठ है, है? हाँ तो उसको तो सबसे अधिक वैराग होता है, तो उनको भी श्रृंगार कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जानबूझकर दोष करते हैं, नहीं जानते हैं, उतनी बुद्धि नहीं है कि आदमी में, ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। फिर भी जब मताग्रह होता है तो जीव जानबूझकर खोटा काम करता है, दोष करता है, वो जानबूझकर करता है और उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। कुदरत के यहाँ तो कानून एक सा है हर एक के लिए। श्रेणी महाराजा तीर्थंकर द्रव थे, तीर्थंकर द्रव है ना, थे क्या है अब तो, लेकिन कानून इनके लिए भी जो है सो है, उनके लिए कोई कानून दूसरा नहीं है। जैसा परिणाम करेंगे वैसा कर्म बंध होगा, वैसा ही उदय आएगा। उसमें तीर्थंकर द्रव है तो कोई दूसरी बात हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो वैराग्य में से बात चला, तो हमने पढ़ा अभी पिछले साल योग वाशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ा, दो प्रकरण बहुत अच्छा लिखा है लिखने वालों ने, मुमुक्षु प्रकरण और वैराग्य प्रकरण। मुमुक्षु कैसा होना चाहिए और मुमुक्षु को वैराग्य कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया लिखा है। वैराग्य का रस चढ़ जावे ऐसा लिखा है। हाँ श्रीमद जी ने तो मुमुक्षुओं को भलामण किया है कि तुम पढ़ो इसको, भले अन्य मत का शास्त्र है लेकिन वैराग्य के लिए तो पढ़ो तुम। तो 16 साल की उम्र में रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया था, बहुत वैराग्य हुआ था। वो शादी करना भी नहीं चाहते थे और न वो राजगादी पर बैठना चाहते थे, बिल्कुल अपने महल में अपने कमरे में एकांत में वो रह जाते थे। अपने अनुचरों से, मित्रों से, किसी से बातचीत करना सब छोड़ दिया था, खाने पीने में सब कम कर दिया था और शरीर का वजन भी घट गया था, ऐसा आता है इसमें। तो एक ऐसी व्यक्ति थी सारे परिवार में कि इनके प्रति सबों को बहुत स्नेह था, रामचंद्र जी के प्रति बहुत अनुराग था। इनकी माता को, भाई वगैरह को तो होवे ही होवे, लेकिन अनुचरों को भी, नौकरों को भी इतना अनुराग था। तो वहां ऐसा लिखते हैं कि वैराग्य के कारण से रामचंद्र जी का शरीर तो दुबला हो गया, लेकिन इनके जो अनुचर थे खास खास जिनके प्रति, वो भी दुबले हो गए। उनको इतनी चोट लगी, करे हमारा राजकुमार इतना गुणवान है, गुणियल पुरुष था, बहुत बहुत गुणवान थे वो, उनको इतना वैराग हो गया कि शरीर उसका घट गया। तो इनके अनुचरों को इतना दुख हुआ कि उन लोगों का वजन घट गया शरीर का। इतना बताते हैं वहां शास्त्रकार, तो फिर इतिहास की रचना करते हैं ना। तो फिर इनके जो गुरु थे वशिष्ठ, वो इनको बुलाते हैं, जनक राजा इनके पिताजी हैं जो, रामचंद्र जी को क्या हो गया है, तुम इसको संभालो, हम लोग सब चिंता में पड़ गए हैं। अनुचर लोग ऐसे समाचार देते हैं कि वो एकदम उदास 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 रहते हैं, सारे दिन उदास रहते हैं, पूरे खान पीन का ध्यान नहीं रखते, सोते भी नहीं हैं रात को, और जैसे कोई चिंता हो गई हो, ऐसे चिंता में पड़े हो, ऐसा हो गया है। तो फिर उसका संवाद बहुत अच्छा लिया है, इतने प्रश्न निकालते हैं, खुद वैराग्य का भाषण करते हैं रामचंद्र जी, करे गुरु आप हमें क्या समझाते हो, राग की बात आपनी आपकी शिक्षा है कि वैराग्य होना चाहिए, ऐसा करके इनके मुंह से काफी संवाद की रचना की है उस प्रकरण में। कहने का आशय यह है कि वैराग्य तो अन्य मति को भी होता है, और वैराग्य का बोध भी अन्य मत में है। वहां भी ऐसी बात कहते हैं कि ये क्षणिक है, सारा संसार है वो क्षणिक है, कभी आयुष पूरा हो जाता है, कभी संयोग में उथल पाथल हो जाती है, पता नहीं लगता। इसलिए तीव्र राग करना ये जीव को दुख का कारण है। यहाँ बेंसरी ने एक अच्छी बात वो ली है कि इस प्रकार का वैराग्य, वैराग्य रूप में टिकना वो लंबा काल नहीं रहता, और उसी उतना ही वैराग्य का कारण पर्याप्त नहीं है। तो फिर वैराग्य कैसे होना चाहिए, ये बात उन्होंने दिया है, परंतु करके लिखा है उसमें वो बात नहीं। परंतु उसे मैंने, जिसको वैराग्य होता है उसे, मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ऐसे अनुभव पूर्वक सहज वैराग्य नहीं होने के कारण सहज शांति परिणमित नहीं होती, कृत्रिम शांति होती है। संसार का सब संयोग क्षणिक है, देह भी क्षणिक है, संसार में उपाधि और दुख के प्रसंग बहुत आते हैं अनेक प्रकार के, इसलिए वैराग्य होवे ये नास्तिका आधार से हुआ वैराग्य है। यहाँ ऐसा कहना है कि अस्ति के आधार से वैराग्य होना चाहिए कि मेरा आत्मा ही परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। वैराग्य मैंने राग का नहीं होना, तो यथार्थ रूप से राग का नहीं होना कैसे होता है कि मैं मेरा स्वरूप से परिपूर्ण आनंद रूप हूं, परिपूर्ण सुख रूप हूं, तो फिर मेरे सुख के लिए मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। क्या उपेक्षा आने का क्या कारण है? दुख होता है इसलिए उपेक्षा है, या मेरा पूर्ण सुख स्वरूप है इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसलिए वो उपेक्षा है? किस कारण से उपेक्षा है? तो यथार्थ रूप में तो अपना पूर्ण स्वरूप के आधार से अपूर्ण को जरूरत और आवश्यकता रहती है। लाख करोड़ अरब पति होने के बाद भी, लखपति होता है फिर करोड़पति हो जाता है अरबपति, फिर वो क्यों ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास करता है? आदमी पूरा नहीं मिला उसको, क्या अरबों रुपया मिलने के बाद भी उसको वो क्या महसूस करता है कि मुझे पूरा नहीं मिला है, जो भी है मैं मेरे पास अधूरा है, पूरा नहीं है, क्योंकि उनकी बराबरी में भी दूसरे लोग होते हैं। तो इधर करोड़पति अरबपति होता है तो फिर टाटा बिरला दिखता है उसको, और टाटा बिरला वाले को हेनरी फोर्ड दिखता है, या क्वीन एलिजाबेथ की संपत्ति उसको दिखती है। तो ऐसे दूसरे जो अपने से ज्यादा है, इसका मतलब कि मेरे पास तो पूरा नहीं है, अधूरा है अभी। तो अपेक्षा रहने का यही कारण है। संसार में तो पूरी संपत्ति क्या, अधूरी संपत्ति भी भोग नहीं सकता है, इसके पहले तो आयु पूरा हो जाता है, आदमी चला जाता है। पूरी तो कोई भोगता नहीं है, अधूरी भी नहीं भोगता है, ये तो हालत है। फिर भी अपेक्षा 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 में सारा जीवन निकल जाता है। तो कहते अपना पूर्ण स्वरूप है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्ण स्वरूप का आलंबन से सारे संसार के पदार्थ में कहीं भी सुख नहीं है, और सुख लेने का प्रयास करना भी बेकार है। मेरा परिपूर्ण सुख मेरे में है, ऐसा अपना स्वरूप के अवलंबन से दूसरे पदार्थ की उपेक्षा हो जावे, उसी को यथार्थ वैराग्य कहने में आता है। ये यथार्थ वैराग्य है, ऐसा यहाँ कहने की बात है। तो ऐसे आनंद स्वरूप से, स्वरूप के अवलंबन से जो शांति और सुख होता है वो सहज स्वाभाविक होता है, और सब क्षणिक है, संसार दुख रूप है, दुख के प्रसंग को अनुभव करके फिर वैराग्य आता है। ये वैराग्य टिकता नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं है लेकिन कृत्रिम है। क्षणिक संयोग के अवलंबन से ये वैराग्य हुआ है, नित्य सहजानंद स्वरूप के अवलंबन से ये वैराग्य नहीं हुआ है, यही कारण है इसका। तो अन्यमति भी वैराग्य होते हैं, लेकिन वैराग्य में टिकने के लिए इनके पास कोई विज्ञान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। मैंने उपदेश बोध तो अच्छा है, योग वाशिष्ठ में भी उपदेश बोध तो अच्छा है, शिक्षा पत्री में स्वामी नारायण का है ना, उपदेश बोध तो अच्छा है, दूसरों में भी है, लेकिन सिद्धांत बोध नहीं है। जिस सिद्धांत बोध के आधार से परिणाम अविचलित रहवे, दृढ़ रहवे, विचलित नहीं हुए, इसका कारण सिद्धांत बोध होता है। ये सिद्धांत बोध जैन दर्शन में है, ये वस्तु का विज्ञान है, इसके आधार से जो बोध होता है वो नाश नहीं होता। वस्तु का स्वरूप भी कायम है, इसका ज्ञान भी कायम है, और इसका फल स्वरूप जो वैराग्य आदि है वो भी हमेशा हमेशा रहता है, यही कारण है। तो कहते हैं कि ऐसे वैराग्य को, वैराग्य के कारण से सहज शांति परिणमित नहीं होती, मैंने कृत्रिम शांति कुछ काल तक रहती है, फिर वो अशांति में आ जाता है। जैसा योग केंद्र की बात चली थी, ध्यान शिविर की, कृत्रिम शांति होती है, कुछ दिनों तक ठीक लगता है, फिर अशांति चालू हो जाती है। वह घोर तप करता है, ऐसा वैरागी जीव घोर तप करता है, बहुत कठिन तप भी करता है, अन्य मत में भी करते हैं, हमने देखे हैं बचपन में। हमारे जो वतन है, छोटा गांव है 10,000 की आबादी का, घर के पास एक मंदिर था जहां हम लोग दर्शन करने को जाते थे बचपन में, तो बालाजी का मंदिर ऐसे, लक्ष्मण जी का मंदिर था, ये इधर है ना तिरुपति बालाजी, वहाँ ये खाकी बाबा लोग आते हैं, घूमते घूमते आ जाते हैं, बहुत कठिन तपश्चर्या करें। कैसी? के गर्मी के दिनों में, चैत्र मास में 10 बजे तो एकदम आग जैसी गर्मी लगे, तो उसी वक्त वो एक अग्नि चारों ओर लगावे, एक तो गर्मी होवे और छाना जो है उसको इकट्ठा करके एक कुंडाला कर देवे, सर्कल बनावे, सभी छाने को जला देवे, चारों ओर से गर्मी हो जावे, और उसमें शीर्षासन करे, एक पग पर खड़े रहवे, पद्मासन में बैठ जावे, कहाँ तक? शाम को 4 बजे 5 बजे तक, 5-5, 6-6 घंटा गर्मी में, 5-5, 6-6 घंटा ऐसे अग्नि और सूर्य के गर्मी दोनों, आदमी को लू लग जावे तो मर जाए, लेकिन वो 5-5, 6-6 घंटे इतनी प्रैक्टिस है। क्या सुनो, जब कोई निर्विकल्प धुन में है, क्या होता है वो, गांजा चरस पीते हैं क्या, उनको उनका जो व्यवहार है उनका ठिकाना नहीं है, गांजा चरस पीते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं धुनी में, धुनी में, धुनी कहते हैं अग्नि नहीं, धुनी सड़गावे फरते, तो फिर उसका जो दिमाग है ना वो धुन में रहता है, कि बस मेरे को तो तपश्चर्या करनी है और भगवान को प्रसन्न करना है, प्रकट कर देना है, उनकी मान्यता है भगवान को ऊपर से नीचे लाने के लिए वो घोर तपश्चर्या भी करता है, ऐसा है मूल तो है, कोई ना कोई कल्पना में धुन में चढ़ जाता है, एक गुस्सा हो जावे तो क्या बोलेगा पता नहीं लगेगा, इतनी गालियां बोले, अगर उनको कुछ गुस्सा आ गया तो खत्म, मारने भी लग जावे, गालियां भी देने लग जावे, क्यों? क्यों उनको और तो कोई ज्ञान है नहीं, उनको तपश्चर्या करना, मैंने तपश्चर्या करना, फिर तपश्चर्या करने वाले को कितना मंद कषाय होता है वो तो वो जानते भी नहीं है, और गांजा चरस पीते तो इसमें क्या दोष है वो भी जानते नहीं है, और उपवास करे तो कच्ची वनस्पति खा ले, कंदमूल खा ले, जंगल में से कुछ भी खा ले, ऐसे उनको कोई व्यवहार का ठिकाना नहीं होता। वह घोर तप भी करता है परंतु कषाय के साथ एकत्व बुद्धि नहीं टूटी होने से, ये संसार का कारण है। क्या है? वर्तमान पर्याय में जो कषाय है उसे तन्मय रहता है, एकत्व बुद्धि मैंने तन्मय बुद्धि, मैं ऐसा ही हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि अनादि से जो चालू है वो नहीं टूटी होने से उसको आत्म प्रतपन, ये तप है, आत्मा में निर्विकल्प दशा में विशेष रूप से स्थिर हो जाना, उसी को आत्म प्रतपन कहते हैं, ऐसा तप उसको प्रकट नहीं होता और उनको सच्ची शांति नहीं मिलती। जो आत्मस्थिरता में सहज शांति मिलती है, ऐसी सहज शांति उसको नहीं मिलती। तो पूज्य बेंश्री ने ये फरमाया कि एकत्व बुद्धि यही संसार का कारण है। एकत्व बुद्धि कसाई की टूटने से संसार मिट जाता है, यही निकलता है इसमें से। बाकी बाह्य वैराग और तपश्चर्या, इससे कोई संसार मिटने वाला नहीं है। कठिन से कठिन क्रिया करे तो भी अपने परिणमन में जो कषाय है उसके एकत्व बुद्धि टूट जानी चाहिए, यही संसार मिटने का कारण है। ये 405 नंबर का हुआ, बाद में कौन सा लेंगे? चैतन्य मेरा देव है, यहां से शुरू होता है बराबर। विधि विषयक है जो वचनामृत है उसमें विधि का विषय लिया है। चैतन्य मेरा देव है, उसी को मैं देखता हूँ, दूसरा कुछ मुझे दिखता ही नहीं है। ने देखो, ये पर नहीं दिखता है, ऐसी बात है उसमें है, पर दिखने में नहीं आता। तो ये भी एक शास्त्र वचन है, लेकिन इस तरह से वो बात है, बात है उसकी कोई अपेक्षा होती है खास प्रकार की। तो पर नहीं दिखता है तो ये बात लिया, देखो मुझे कुछ मुझे दिखता ही नहीं है, मेरा चैतन्य देव है उसी को मैं ऐसे देखता हूँ कि दूसरा मुझे कुछ दिखता नहीं, ऐसा। ये अध्यात्म रस की तीव्रता में ऐसे वचन भी ज्ञानियों के आचार्यों की निकलते हैं। तो जहां जिस प्रकार से जो बात आई है उसी प्रकार समझ में आना चाहिए, फिर दूसरा प्रकार इसमें लेना नहीं चाहिए। ऐसा द्रव्य पर जोर आए, क्या स्वद्रव्य पर ऐसा जोर आए और स्वद्रव्य की ऐसी ही अधिकता रहे तो सब परिणमन निर्मल होता जाता है। चैतन्य मेरा देव है, अद्भुत से अद्भुत दिव्य स्वरूप आत्मा है, उसको देखता हूँ तो ऐसी नजर से देखता हूँ कि उसको देखने के बाद मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा रस आता है, एकाग्रता होती है स्वरूप में तो दूसरा कुछ दिखता नहीं है। ऐसा जोर से स्वद्रव की बात निकलती है देखने पर तो उसमें सब पर्याय निर्मल निर्मल निर्मल, सभी पर्याय निर्मल हो जाती है। ये अध्यात्म के जोर से ऐसी बात निकलती है। अध्यात्म की जब ऐसी विवेक्षा के वचन निकलते हो तब आगम का जो विषय है स्वपर प्रकाशक, वो बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रमाण का विषय में उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत है, लेकिन नियम सार की 50वीं गाथा में पर्याय को परद्रव्य कहेंगे तो वहां आगम की विवक्षा लेकर के प्रमाण का बात वहां बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहने का जो फोर्स है, जोर है, उसको यहाँ दिखाना है। अगर ऐसी बात नहीं करे तो ये फोर्स जोर बाहर में दिखा नहीं सकते, व्यक्त नहीं होता, और बीच में दूसरी बात लेने से ये फोर्स टूट जाता है। जैसे भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति में हम क्या करेंगे, हे प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व है, क्या कहेंगे, क्या ये परद्रव्य है या स्वद्रव्य है। द्रव्यानुयोग से तो वो परद्रव्य है, तो आप परद्रव्य है, मेरा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे भक्ति होती है कभी है? भक्ति ऐसे होगी क्या? तो वहां परद्रव्य की बात लाएंगे बीच में तो भक्ति का भाव टूट जाएगा, भक्ति का भाव ही उड़ जाएगा, होगा ही नहीं। ऐसे जान दृष्टिकोण से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चारों योग में ऐसा है कि इसमें कोई कुतर्क लगाना नहीं चाहिए, ये कुतर्क है। जैसे चरणानुयोग है, चरणानुयोग में मुनिराज का आचरण की पद्धति का सिद्धांत चलता है, तो कहते हैं कि मुनिराज जब चलते हैं आहार के लिए नगर में आते हैं, कैसे चलते हैं कि हिरिया समिति से चलते हैं, पांच समिति है ना, उसमें चलने की समिति को हिरिया समिति कहते हैं। तो हिरिया समिति में कैसे चलते हैं कि अपने नजर को नीचे रखते हैं, इधर उधर चंचलता वाली नजर उनकी नहीं रहती, क्योंकि अंतर्मूर्त में तो निर्विकल्प हो जाते हैं, तो चंचलता वाले को तो निर्विकल्पता आती नहीं, इसलिए चलते वक्त नगर में प्रवेश करते हुए भी वो इधर उधर नहीं देखते, नीचे देखते जमीन पर। उसमें भी कोई छोटी मोटी कीड़ी मकोड़ी, चींटियां कोई चलती हो, छोटे मोटे जीव हो नजर में आ जाए तो उस पर वो पाँव नहीं रखते, मर जाए इसलिए इसके पर पाँव नहीं रखेंगे। ऐसे चलने का नाम इरिया समिति है। अब फिर द्रव्यानुयोग के बाद बीच में कोई घुसाड़े कि क्या मुनिराज अपना शरीर को हिला सकते हैं, पर पैर को इधर उधर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है क्या, ये इरिया समिति वाली बात झूठी है, आत्मा कर ही नहीं सकता। या तो चरणानुयोग खोटा है या तो द्रव्यानुयोग खोटा है, और एक खोटा तो दोनों खोटा हो गया, क्योंकि कहने वाला एक ही भगवान है, एक बात खोटी कहता है तो दूसरी बात भी इसकी सच्ची नहीं है, विश्वास चला जाता है। एक आदमी अपने साथ झूठ बोलता है तो हम क्या इसकी दूसरी बात पर विश्वास करता है, क्या सच्ची बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे समझने में भी चारों अनुयोग का कोई भी विवक्षा है, समझने में भी ठीक ढंग से समझना पड़ता है, पद्धति इसकी ठीक होनी चाहिए, वरना आपस में विरुद्ध बात टकराएगी और कहीं भी समाधान नहीं होगा, असमाधान रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा द्रव्य पर जोर आए, द्रव्य की अधिकता रहे तो सब परिणमन निर्मल हो जाता है, स्वयं अपने में गया, लीन हो गया, अपने में डूब गया उपयोग, एकत्व बुद्धि राग से टूट गई, वहां सब रस ढीले हो गए, कषाय के सब परिणाम के रस ढीले हो जाते हैं, और स्वरूप का रस प्रकट होने पर अन्य रस में अनंत फिकापन आ गया, दूसरे रस में बिल्कुल एकदम अनंत फिकापन आ गया, बिल्कुल चिकास नहीं रहती है, क्योंकि वो कषाय भी भिन्न भाषित भिन्न अनुभव में आता है।
यही लिखते हैं कि न्यारा, सबसे न्यारा, न्यारा मैंने भिन्न, न्यारा सबसे न्यारा हो जाने से संसार का रस घटकर अनंतवा भाग रह गया। चैतन्य रस पैदा हुआ, प्रकट हुआ और संसार रस है वो अनंतवा भाग में घटकर रह गया और सारी दिशा परिणमन की पलट गई। ऐसे परिणमन की दिशा द्रव के जोर से पलटे, यही विधि से आत्महित होता है। यही विधि मोक्ष मार्ग की है, दूसरी विधि मोक्ष मार्ग की नहीं है। ऐसे यहाँ विधि का प्रतिपादन इस वचनामृत में किया है। यहाँ तक क्रम विपर्यास तथा साची विधि नो क्रम शू छे ए बाबत में वधारे स्पष्टीकरण करूं। क्रम विपर्यास संबंधी स्पष्टीकरण ए छे कि आत्मा में अपना जो गुणधर्म है, पदार्थ है आत्मा, और उसका गुण धर्म का विज्ञान वाला वो वैज्ञानिक पदार्थ है। आत्मा खुद ही गुण धर्म को धारण करने वाला, अपने गुण धर्म को धारण करने वाला वैज्ञानिक पदार्थ है। दूसरे पदार्थ से भी उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी वैज्ञानिक तौर से होता है। तो अपना आत्महित करने का भी एक विज्ञान है। उस विज्ञान को जान करके उस विज्ञान के अनुसार हमारी कार्य पद्धति होवे तो हमें सफलता मिलती है, या दूसरे ढंग से हम करना चाहते हैं अज्ञानवश तो अपना कार्य सफल नहीं होता है, तो उसका नाम क्रम विपर्यास है। कि जिस ढंग से, जिस क्रम से काम की शुरुआत करनी होती है उसी ढंग से होती है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम रेत में मकान नहीं बनाते, जितना ऊंचा मकान होगा उसी के अनुपात में नीचे नींव डालेंगे, कितनी गहराई में जाएंगे, और वहाँ भी इसकी मजबूताई के लिए जो भी आरसीसी का सीमेंट कंक्रीट का काम होता है वो भी नींव में करेंगे। मैंने एक मकान बनाने में भी इसका विज्ञान है, जिसकी आयु 100-200 साल से ज़्यादा होती नहीं। हर एक मकान 100-200 साल में तो इतना जीर्ण होता है कि फिर वो गिर जाता है या गिराना पड़ता है, बाद में नया बनाना पड़ता है। तो जो अनंत काल का हित करना है ऐसा कोई काम है तो इसका विज्ञान नहीं हुए वो कैसे बने। एक कपड़ा बनाना है तो भी इसका विज्ञान है कि ये मजबूत कपड़ा बनाने से सूत ऐसा चाहिए, मशीनरी ऐसी चाहिए, इसका उतना, इस सब प्रकार का विचार चारों पहलुओं का अनेक पहलू से होता है कि नहीं। वैसे इसका भी एक व्यवस्थित विज्ञान है, उसको यथार्थ रूप से समझें और उसी अनुसार हम आगे बढ़ें तो ये क्रम का विपर्यास नहीं है इसमें। तो वो क्रम का हमारे यहाँ आत्महित के विषय में मुमुक्षुओं को क्रम कैसा होना चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसका संक्षेप में अगर हम विचार करें तो पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए आज से 52 साल पहले ये सूत्र दिया है कि शुरुआत तो ऐसे करना, वास्तविक शुरुआत, वास्तविक मैंने वैज्ञानिक, कल्पित नहीं, कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना वही वास्तविक शुरुआत है। ऐसे पूर्णता का ध्येय के बिना किसी को शुरुआत होती भी नहीं, माने तो शुरुआत के विषय में भुला हुआ है, उसकी शुरुआत ही भूल वाली है, तो आगे की तो कोई बात सच्ची होने का सवाल रहता ही नहीं। जिसको ऐसा पूर्णता का लक्ष्य रहता है उसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होने की भावना रहती है, पूर्ण मैंने मोक्ष में हो जाने की भावना रहती है, यानी दृढ़ मोक्षेच्छा उनको होती है। श्रीमद् जी के ये शब्द है दृढ़ मोक्षेच्छा, तो उसमें स्वरूप प्राप्ति की भावना है, अपना हित की लगन है, वो ऐसी रहती है कि जैसे चटपटी होती है, रहा नहीं जाता। चटपटी होते तो क्या है कि रहा नहीं जाता, वैसे अपने हित के कार्य में वो प्रमाद नहीं कर सकता, नहीं करता है सहज रूप से। ऐसी लगन, इतनी तालावेली, बैंसर का ये शब्द है, तालावेली उसको लगती है। तो मैंने अपने हर परिणाम में उसको जागृति आ जाती है कि कहीं मेरा अहित रूप परिणाम तो नहीं होता, मैं अपना हित रूप तो परिणाम करता हूं, इस विषय में बहुत जागृति आती है। उस जागृति के वश उसको अपना परिणाम का अवलोकन रहता है और अपना मूल स्वरूप क्या है कि जिसके आधार से सहज रूप से हमारा परिणाम में मलिनता नहीं हुए और सहज रूप से पवित्रता चालू रहे और बढ़ती जाए और पूर्णता के प्रति हमारे परिणाम की गति स्वाभाविक हो जाए, ऐसा एक अभिप्राय से जिस स्वरूप का अवलंबन याने आधार लेना है इसकी खोज चलती है कि मेरा मूल स्वरूप कौन सा है, कैसा है। तो ज्ञानियों के वचनों में मैंने श्रुत ज्ञान में, द्रव्य श्रुत में, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि तेरा मूल स्वरूप आत्मा ऐसा है, ऐसा है, मैंने ध्रुव है, ज्ञायक है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, अपरिणामी है, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, और अनंत गुण का अभेद परिपूर्ण द्रव्य स्वरूप है। लेकिन ये तो शब्द हो गए, वास्तव में ये सब वाचक शब्दों का वाच्य जब तक स्पष्ट रूप से ज्ञान में नहीं आवे वहां तक उस अपने स्वरूप के विषय में ऐसे शब्द के माध्यम से भी कुछ न कुछ कल्पना बन जाती है। तो जो स्वरूप विकल्पातीत है उसको हम विकल्प में समाविष्ट कर देवे तो ये एक विप्रयास हो गया, यानी विपरीतता हो गई। विप्रयास मैंने क्या, विपरीतता हो गई। तो इसलिए अतीन्द्रिय स्वरूप को अतीन्द्रिय चैतन्य और ज्ञान के अंश से उसकी पहचान करने की एक विधि है। इस विधि से ज्ञान लक्षण से उसकी पहचान होती है, वो परिचय पूर्वक होती है, और ऐसा जब पहचान होता है तब अनंत महिमाधारी आत्मद्रव्य का अनंत महिमा भीतर में से उमड़ पड़ता है और ये महिमा आगे बढ़ करके एक स्टेज में अभेद रूप से अनुभव रूप हो जाता है। ये चैतन्य का अपूर्व महिमा का फल स्वरूप निर्विकल्प तत्व का निर्विकल्प महिमा हो जाता है, तभी उसको स्वानुभव और सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो ऐसा ऐसी एक मुमुक्षु की भूमिका का क्रम की एक विधि है। इस क्रम से अगर जीव आगे बढ़ता है तो उसमें उसको निष्फलता नहीं होती, मोक्ष मार्ग तक ये पहुंच जाता है। मोक्ष मार्ग में आया तो उसको आत्मस्वरूप का भी अनुभव ज्ञान है और आत्मस्वरूप प्राप्ति का भी उसको अनुभव ज्ञान है, विधि का भी, और विधि बदलती नहीं। जिस विधि से चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हुआ उसी विधि से पंचम गुण स्थान आएगा, उसी विधि से आगे के सब गुण स्थान उत्पन्न होते हैं और मोक्ष तक आत्मा विकास कर लेता है अपने पर्याय में। ऐसा एक विधि का अनादि अनंत नियत स्वरूप है। क्या नियत मोक्ष मार्ग नियत स्वरूप है, कहीं भी तीन काल में बदलता नहीं। एक हो ये तृण काल मां परमार्थ नो पंथ। आगे ज्ञानी हो गए वर्तमान में होय, थासे काल भविष्य मां मार्ग भेद नहीं कोई। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में ये सब बात लिखी है। तो जो भी ज्ञानी वर्तमान में होते हैं, आगे हो गए हैं, भविष्य में हो गए, एक ही मार्ग में चलने वाले होंगे, मार्ग भेद किसी का नहीं होता। ये तो एक कम नसीबी है कि जैन धर्म कहने में आता है उसमें भी कहीं प्रकार के संप्रदाय हो गए। मार्ग जब दो नहीं है तो दो जैन होते नहीं, एक प्रकार के ही जैन होते हैं। लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, हम तो श्वेतांबर है, हम तो दिगंबर है, हम तो स्थानकवासी है, तो ये सब गड़बड़ी है अभिप्राय भेद की, उसमें सब सच्चे कभी हो सकते नहीं, ऐसी बात है। इस संक्षेप में विधि का विषय है। बस जो क्रम समझ लेना और क्रम से चलना, क्रम विपर्यास हो गया मानो, तो क्रम समझ लेना कि कहां से शुरुआत होती है, आगे कैसे क्रम में आगे कैसे बढ़ना होता है, और मिलान करते रहना कि हम क्रम में हैं या कोई क्रम छोड़ दिया है हमने, विपर्यास हो गया हमारे से। बस देखिए, एक इस मार्ग की सुंदरता यह है कि अगर शुरुआत ठीक हुई तो आगे भूल नहीं होती है, ये इस मार्ग की सुंदरता है। अगर किसी भी मुमुक्षु ने पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत किया तो आगे सब यथार्थ होगा, ये सुंदरता है इस मार्ग के। और पहले से ही यथार्थ शुरुआत नहीं हुई तो उसको, जिसको शुरुआत नहीं, उसको गड़बड़ी शुरू से ही हुई है, हमें इसको तो फल प्राप्ति यथार्थ आने वाली है ही नहीं। इसलिए शुरुआत ठीक कर लेना, फिर ऑटोमेटिक यथार्थता आती है। क्यों आती है, इसका भी लॉजिक है कि जब हमें हमारा आत्म कल्याण करने की भावना है शुद्ध अंतकरण से, तो भावना का ऐसा स्वभाव है कि भावना विरुद्ध परिणाम होते ही या प्रसंग होते ही ये भावना को ठेस पहुंचते हैं, तो उसको दर्द हुए बिना रहेगा नहीं। ये भावना का ऐसा प्रकार है, क्योंकि भावना के साथ एक श्रद्धा का कार्य रहता है, भावना के साथ रहता है। दृष्टांत देवे कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं और गुरुदेव के प्रति हमारी भावना होती है पूज्यता की, कौन सी भावना होती है, ये दृष्टांत है, ये तो पूज्यता की भावना होती है और हम उनको श्रद्धते हैं। श्रद्धा मैंने क्या करते हैं कि ये हमारे हित के निमित्त है, ऐसी श्रद्धा है ना, हमारे ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, इससे हमारा हित होने का निमित्त है। तो श्रद्धा और भावना एक व्यक्ति में हो गई। अभी इनसे कोई अनुचित व्यवहार करेंगे तो क्या होगा कि हमें दुख हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे जब हमारी शुद्ध अंतकरण से आत्म कल्याण की भावना होगी तो हमारे परिणाम हो या प्रसंग कोई बाहर का ऐसा हो कि जिससे अहित होता हो तो ये भावना को ठेस पहुंचेगी, तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा परिणाम को हमको खबर नहीं रहती है क्या हो गया, खबर तो उसको नहीं रहती है कि जिसको आत्म कल्याण की सही भावना नहीं है, उसको अपना परिणाम कैसा चलता है उसके खबर नहीं पड़ती, पता नहीं चलता। लेकिन सही भावना वाले को तो पता चल जाएगा, फौरन पता चल जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। हाँ, तो निषेध आ जाता है भावना के, जो विरुद्ध परिस्थिति है उसका निषेध आता है, सीधी साधी बात है वो तो। हाँ, वही प्रशस्त द्वेष उसको कहते हैं, जिसको प्रशस्त राग होता है उसको प्रशस्त द्वेष होता ही है। एक सिक्का की दो बाजू है, वो एक बाजू वाला सिक्का कभी मिलता नहीं है। अप्रशस्त राग वाले को अप्रशस्त द्वेष होता है, प्रशस्त राग वाले को प्रशस्त द्वेष होता ही है, नहीं हो वैसा बनता नहीं है। किसका कारण? हाँ, हित का कारण तो है, जो यथास्थान में है वो। ऐसा दृष्टांत आता है शास्त्र में कि जंगल में कोई मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और कोई सम्यक दृष्टि राजा वहां से पसार होता है। उसने देखा कि मुनिराज अपने ध्यान में मग्न है और साथ ही उसकी नजर गई कि एक बाघ है, उसको खाने के लिए आ रहा है, भूखा त्राड़ लगाता हुआ। मुनिराज तो हिलेंगे नहीं, छठवें गुण स्थान में उसको पता चले कि ये पशु मुझे खाने के लिए आता है, हमला करेगा, लेकिन मुनिराज तो हिलेंगे नहीं, वो तो ध्यान में डूब जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जो राजा है वो क्या करेगा, तरवार निकालेगा। अगर तरवार के भय से वो बाघ चला गया तो ठीक है, पर नहीं चला गया तो मार डालेगा, शिरच्छेद कर देगा। संगनी पंचेंद्रिय है बाघ, क्या है, हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, क्रोध भी आएगा उसको। अरे मुनिराज को तो खाता है क्या, मैं खड़ा हूं इधर, पहले मुझे खा जाओ, वो तरवार से उसको मार डालेगा। ऐसे परिणामों से उनको पाप बंद नहीं होता, पुण्य बंद होता है। प्रशस्त द्वेष पाप का कारण नहीं है, पुण्य बंद का कारण है। प्रशस्त राग भी पुण्य बंद का कारण है, प्रशस्त द्वेष भी पुण्य बंद का कारण, पाप का कारण नहीं है। राग भाव नहीं, प्रशस्त अप्रशस्त राग बे प्रकार ना हो ऐसे। अप्रशस्त राग पाप नु बंद नु कारण, प्रशस्त राग पुण्य नु कारण है। अप्रशस्त द्वेष पाप बंद का कारण और प्रशस्त द्वेष पुण्य बंद का कारण। प्रशस्त द्वेष दो प्रकार का, एक ऐसे जैसा दृष्टांत दिया वैसे पर संबंधित और अपने आप संबंधित, कि अपना दोष होता है, अवलोकन में आता है कि मेरे परिणाम में ऐसा दोष हुआ, तो अपनी निंदा करता है। क्या करता है? अपनी निंदा करता है, खेद होता है उसको, अरे आत्मा अभी भी तुझे ऐसा परिणाम होता है, उसमें खेद होता है। वो प्रशस्त द्वेष है और पुण्यबंध का कारण है, पाप का कारण नहीं है, ऐसी बात है। ऐसे धर्मात्मा हो, धर्मायतन हो, धर्म हो, धर्मशास्त्र हो, इसके प्रति कहीं भी संसार में ऐसे प्रसंग हुए कि कोई पापी प्राणी उसके प्रति प्रतिकूल वर्तता है, तो सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, मुमुक्षु हो, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये गुरुदेव का वचन है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? अरे 723 परमागम सार। ऐसा तो प्रसंग बने थे गुरुदेव के उपस्थिति में, ऐसा प्रसंग बना था, बाद में पूछ लेना, बताऊंगा मैं। तो व्यक्तिगत बात है इसलिए बाद में पूछ लेना, लेकिन इधर 723 में कहते हैं ये सिद्धांत विषय एक बात है कि जैसे जिन वाणी में कोई असत्य का स्थापन करता है और सत्य को उत्थापन करता है, ऐसा कोई करता है तो कहते हैं कि धर्मी जीव होता है, तो अगर उसको वाणी का योग है समझाने का और पुण्य का उदय है, मैंने उसका भी कोई प्रभाव पड़ता हो समाज में, तो वाद विवाद करता है। क्या करता है? सामने वाले के साथ वाद विवाद करके असत्य का उत्थापन करेगा धर्मी और सत्य का स्थापन करेगा, परंतु अपने को ऐसा वाणी का समझाने का योग नहीं हो, समझ बराबर हो, समझाने का वाणी का योग न हो और पुण्य का योग न हो, तो क्या करे वो? कि उसको अंतर में असत्य का नकार आवे ही, तो तीन शब्द लिया है गुरुदेव ने, सामान्य तौर से नकार नहीं आवे, नकार आवे, निषेध आवे, तल्लाक आवे। क्या बोले? तल्लाक आवे, मैंने जोर से निषेध आवे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कभी, तल्लाक मैंने अलग हो जावे, इससे संबंध नहीं रखे, अलग हो जावे, वो तल्लाक कहते हैं ना, उर्दू शब्द है, शादी में फिर डाइवर्स होते हैं उसको तल्लाक कहते हैं, वहां वहां शांति जाड़वी राखना, मध्यस्थ भाव राखना। कैसा मध्यस्थ भाव राखना? मिथ्या मध्यस्थ भाव राखना, ऐसा विशेषण लगाया गुरुदेव ने। हाँ, मिथ्या मध्यस्थ भाव रखने वाला मिथ्या दृष्टि है, वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होने की योग्यता भी उसमें नहीं है। सम्यक दृष्टि वहां शांत रहकर बैठता नहीं, क्या कहते हैं, वहां वो शीतल शांत नहीं हो जाता कि हम तो सम्यक दृष्टि है, हम तो शांत रहेंगे, ऐसा नहीं होता सम्यक दृष्टि को। वहां सम्यक दृष्टि वहां शीतल होकर बैठे रहता नहीं। दृष्टांत देते गुरुदेव कि अपनी माता पर कोई आल लगावे कि तेरी माता ऐसी है फैसी है, तो क्या सुपुत्र वो शांति से सुनता रहता है? क्या उसका लोई गर्म हुए बिना रहेगा? नहीं। ये जिनवाणी भी माता है, कोई असत्य का स्थापन करता है, सत्य को उड़ाता है, तो धर्मी उसको सहन करता नहीं है। तो इसलिए दृष्टांत दिया माता का कि अपनी माता पर कोई आड़ लगाता है तो सुपुत्र क्या उसको शांति से सुनता रहता है? क्या प्रश्न उठाया है कि नहीं सुनता रहता? ऐसे तत्व से विरुद्ध कथन आवे वहां धर्मी उसको सहन कर सकता नहीं। देखो क्या कहते गुरुदेव, ऐसी बात बहुत बातें की है गुरुदेव ने, हजारों बात कही है, इसमें सब पहलू की बात किया है। ऐसी ऐसी बात है, तो दूसरी बात है, ऐसा यथार्थ में ऐसा नहीं होता, फिर अयथार्थ में तो जैसा परिणाम है सफल आएगा, तो कुदरत के अधीन, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता, ये कहने का अभिप्राय है। उनको भीतर में दुख हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको तल्लाक आना चाहिए। भाव तो ठीक हो, मैंने बाहर के कार्य तो पुण्य अधीन है, है? बस अपना मर्यादा अपने परिणाम तक है, बाहर में तो पुण्य अधीन सब हो गया, अपना मर्यादा अपने परिणाम में नहीं, परिणाम में निषेध आना चाहिए बस बात, फिर तो पुण्य होगी, पुण्य योग होगा ऐसा विचार आएगा, पुण्य योग होगा ऐसा विचार आएगा, वाणी का योग होगा तो बोलने लगेगा, और दूसरा कोई पुण्य योग होगा तो उसी अनुसार वो कदम उठाएगा, जितनी शक्ति है उतना तो काम करेगा, शक्ति नहीं है तो उसको परिणाम में निषेध आएगा, मार्ग पुण्य।